तुम्हारी दलील क्या है?
मुझे लगता है मुझसे सीनियर और माहिर पायलट्स हैं जो इस परेड के लिए मुनासिब रहेंगे कर्नल साहब।
तुम्हें F-14 फाइटर जेट के बेहतरीन पायलट होने की बुनियाद पर चुना गया है और तुम्हें परेड में रहना होगा। कौन ज्यादा मुनासिब है इसका फैसला हम करेंगे।
जी कर्नल साहब, लेकिन मैं
फौज में लेकिन नहीं होता है। क्या आपको बताना होगा लेफ्टिनेंट बाबाई? कुछ हुआ?
नहीं नहीं कर्नल साहब, इजाजत दें।
लेफ्टिनेंट बाबाई, मैंने अब तक कभी आपको और आपकी बीवी को क्लब की पार्टीज में नहीं देखा है।
सच पूछें तो मेरी बीवी की प्रेगनेंसी का आखिरी महीना चल रहा है, इसलिए उसका घर से बाहर आना मुश्किल है।
बहरहाल बेहतर होगा कि कम से कम आप खुद क्लब के प्रोग्राम में शिरकत करें।
जी कोशिश करूंगा कर्नल साहब।
आपको आम लोगों के बनिस्पत बहुत ज्यादा संभल कर काम करना चाहिए। अगर इंटेलिजेंस को इस बात का शक हो गया कि आप जैसे लोग भी फौज में हैं, तो उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा।
आपकी बात को नजर में रखते हुए हम कब से दूसरों के साथ खुलकर बात करके हमारे साथ शामिल करना शुरू कर सकते हैं?
मौजूदा हालात के मुताबिक बेहतरी इसी में है कि सब्र करें। यही कि इस मुल्क के लोग हुकूमत के जुल्म की तरफ मुतवज्जे हो गए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में इसका रद्द अमल जाहिर होने लगा है। लड़ाई के इस मरहले के लिए इतना काफी है। आप जैसे लोग और आपके दोस्त अब तक जिस हद तक काम कर रहे थे, कुरान की क्लासेस, तकरीरों का, जान पहचान के पायलट्स और अफसरों के दरमियान तकसीम करना, आप अपनी लड़ाई को इसी तरह जारी रखें जब तक हालात बेहतर हो जाएं इंशाल्लाह।
क्या आप तक ये खबर पहुंची है कि कसर जेल के सियासी कैदियों ने भूख हड़ताल शुरू कर दी है?
खुदा उनकी मदद करे। ये रास्ता जिस पर लोगों ने कदम बढ़ाए हैं उससे कभी पलटेंगे नहीं।
मौलाना साहब, मैंने जिस बारे में आपसे बात की थी उसका क्या?
आप भी उस परेड में हिस्सा लें। आपके होने से ना शाह की शान कुछ बढ़ जाएगी ना आपकी कुछ कम। ये लड़ाई फिलहाल आपके फायदे में नहीं है। जो भी खुदा चाहेगा वही होगा।
जी बिल्कुल सही कह रहे हैं।
लीजिए, चाय ठंडी हो जाएगी। मुस्तफा साहब, बिस्किट दीजिए, वहां दीजिए, मेहमानों को पहले दीजिए।
शुक्रिया।
ये लो अब्बा।
शुक्रिया।
आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।
जल्दी करो, चलो तैयार हो जाओ। ठीक है, जल्दी करो।
सभी पायलट जल्दी करें, टाइम नहीं है।
ओके सर,
जल्दी करो।
ओके सर,
हैप्पी लैंडिंग गाइस।
अगर ये चालू हो जाए तो हम देखेंगे अब्बास उनमें से एक जहाज में होगा। ये ठप ठप करके टीवी खराब कर देंगे क्या? देखो, नहीं मारो हाजी अब्दुल्लाह, नहीं मारो, खराब हो जाएगा, तोड़ दोगे। अमानत है, सिर्फ इसकी सेटिंग की जरूरत है।
ये ऐसा ही है, मुस्तफा ने कहा है कि जब तक मारोगे नहीं सीधा नहीं चलेगा, कुछ भी नहीं दिखेगा। मारते रहो जब तक दिखे नहीं।
हाँ ठीक है ठीक है।
देखो, तुम्हारा अब्बास इन्हीं में से एक में होगा।
हमारा अब्बास इनमें से एक में है?
खुदा हिफाजत करे, अच्छा लड़का है।
ऐ खुदा, तू ही उसकी हिफाजत कर।
देखो तो हाजी, F-4 दर क्या जबरदस्त जहाज है। सईद बता रहा था कि अभी अभी खरीदा है।
F-4 दर क्या है? क्या जहाज में कभी दो दरवाजे या चार दरवाजे होते हैं? F-14 समझे, F-14।
तो क्या सिर्फ गाड़ी में दो दरवाजे या चार दरवाजे होते हैं? सईद कहता है इसमें भी चार दरवाजे हैं। नालायक लड़का, थोड़ा सा अच्छे से उड़ाता तो आज इनमें से एक में होता।
हर काम के पीछे हिकमत होती है, कोई मसलहत होगी, हमें क्या पता।
बुरा मत मानना लेकिन बात कुछ और है। उन्होंने पूछा होगा कि कौन जाएगा तो अब्बास बीच में घुस गया होगा, सोचा भी नहीं कि दोस्त को मौका मिल जाए।
अरे तुम फिर से गुस्सा हो गए हजी अब्दुल्ला मिठाई वाले। अरे ये तो फिर से खराब हो गया।
ये रुक गया।
नहीं मारो हाजी अब्दुल्ला, नहीं मारो खुदा के लिए।
हमें पता होता कि अब्बास किस प्लेन में है।
क्या फर्क पड़ता है?
मुझे बहुत फिक्र हो रही है।
वो खुदा है जो सबकी हिफाजत करता है, जो सबकी हिफाजत करता है।
खुदा इन सबकी हिफाजत करे उनके माँ बाप के लिए,
उनकी बीवी बच्चों के खातिर भी ना।
सलाम अलैकुम, कर्नल सुल्तानी ने आपको बुलाया।
चले कीजिए सर।
एयरफोर्स के कमांडर आला हजरत के साथ बैठकर परेड देख रहे थे, मुझे फोन किया था, बहुत गुस्से में थे, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। ये तुमने क्या किया?
हाइड्रोलिक में खराबी आ गई थी कर्नल साहब।
तुम्हें यकीन है सिर्फ यही था लेफ्टिनेंट बाबाई?
जी सर, खुश नसीब थे कि लैंड कर सके।
बहुत अच्छे, पता चलेगा। F-14 से F-5 कब से जाने लगे?
आप सही हैं सर, गलती हो गई।
जब तक रिपोर्ट नहीं आती है तुम हिरासत में रहोगे।
खुदा तुझे से उम्मीद है।
फौज के कमांडर्स और खुद आला हजरत हमसे इस हादसे की वजाहत चाहते हैं, और इतना आसान नहीं कि अपनी जिम्मेदारी से हाथ उठाकर निकल जाएं।
क्योंकि मुमकिन है कि नेशनल सिक्योरिटी का मामला हो सकता है, बेहतर होगा कि रिपोर्ट बनाकर डिपार्टमेंट के हवाले कर दिया जाए।
एक फौजी को फौजी कोर्ट के मुताबिक सजा मिलनी चाहिए, वो भी अगर उसका जुर्म साबित हो जाए। ऐसा नहीं करने से फौज की शान पर उंगलियां उठ सकती हैं। जनरल साहब, ये पायलट बाबाई की फ्लाइट रिपोर्ट है।
मुझे यकीन है कि इस हादसे की प्लानिंग पहले से की गई थी, आपको बाद में पता चलेगा। जनरल साहब,
मेरी नज़र में यह हादसा अब्बास बाबाई के बायोग्राफी का एक छोटा सा हिस्सा है।
तुम्हारा मतलब क्या है?
सच पूछे तो मैंने आज तक कभी उसे पायलट क्लब की किसी पार्टी में नहीं देखा है।
बाबाई एक मजहबी खानदान से है, मजहबी लोगों का फौज में होना आने वाले वक्त में हम सब के लिए खतरनाक है।
मैंने अपने नीचे के सभी अफसरों को अपनी नज़र में रखा है। बाबाई एक रिवायती और मजहबी खानदान से है, बहुत ही जिम्मेदार और फौज का वफादार। मुमकिन नहीं है कि उसने जानबूझ के किया हो।
तो आपकी राय यह है कि उसे आजाद कर दिया जाए ताकि वो अपने दोस्तों के साथ बैठकर हमारा मजाक उड़ा सके?
मैंने ऐसा तो नहीं कहा। जनरल साहब, बेहतर होगा कि हम टेक्निकल एक्सपर्ट की रिपोर्ट आने के बाद ही कोई फैसला करें।
मैं चाहता हूं अगले 2 घंटे में रिपोर्ट मेरे टेबल पर होनी चाहिए।
सलाम कर्नल साहब।
क्या हाल है?
ठीक है साहब।
फ्लाइट कंट्रोल टीम ने सारी चीजें चेक कर ली?
हमने दोनों हाइड्रोलिक सिस्टम को चेक किया, दोनों खराब थे।
यानी उसने बैकअप सिस्टम का इस्तेमाल किया?
जी कर्नल साहब।
तुम्हारी राय क्या है?
अगर मेरी राय पूछे तो पायलट ने बहुत होशियारी से काम लेते हुए जहाज को सही सलामत जमीन पर उतारा है।
तुम्हें क्या लगता है ये हादसा क्यों पेश आया?
अभी और चेक करना होगा। परवाज के पहले के चेक के मुताबिक सारी चीजें ठीक थी, फॉर्म में भी सब बराबर है।
क्या मुमकिन है किसी ने जहाज से छेड़खानी की हो?
कुछ भी नामुमकिन नहीं।
तुमने ये सवाल सुना ही नहीं है।
जी।
जल्द से जल्द अपनी रिपोर्ट तैयार कर लो।
जी कर्नल साहब।
जनरल इंतजार कर रहे हैं।
जी जरूर।
सलाम लेफ्टिनेंट साहब। कर्नल साहब ने कहा है कि आप घर जा सकते हैं।
या अली,
तुम्हारी जनरल करनी के साथ जान पहचान है?
नहीं, नजदीक से नहीं सर।
आज उनके दफ्तर से फोन आया था, खुद उन्होंने मुझसे बात की।
किस बारे में?
तुम्हारे बारे में। उन्होंने कहा कि बाबाई हमारे बेहतरीन लोगों में से है, जिसकी मौजूदगी हमारी फौज के लिए जरूरी है। उन्होंने कहा कि तुम्हारी रिपोर्ट इस तरह बननी चाहिए कि तुम्हें कोई सजा नहीं मिले।
जनरल साहब की मेहरबानी है, लेकिन मुझे सिफारिश की जरूरत नहीं थी। मैंने आपसे बताया भी था कि मेरे जहाज में टेक्निकल खराबी पेश आई थी।
पता है, लेकिन इस मुल्क में किसी के भी खिलाफ रिपोर्ट बनाना बहुत ही आसान है। जरा अपने आसपास नजर घुमाओ।
जी समझ गया, आपका शुक्रिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल साहब, आपने जहमत की।
कोई बात नहीं, खुदा हाफिज।
तुमने सारी चीजें चेक कर ली?
सलाम अलैकुम।
वालेकुम सलाम।
अभी यहाँ क्या कर रहे हो?
तुम कब आजाद हुए? टेंशन मत लेना, आज दोपहर मलिहा भाभी की तबीयत खराब हो गई, उसे हॉस्पिटल ले गए हैं। अभी मैं और आनी उनका सामान लेने यहाँ आए।
क्या हुआ सईद?
डॉक्टर ने कहा कि बहुत स्ट्रेस था, बेबी इज कमिंग।
तुम्हारा बच्चा आ रहा है, चलो भी।
लेकिन अभी टाइम नहीं हुआ है, मुझे कुछ चीजें लेनी होंगी।
आनी ने ले लिया है।
मेरी चाबी?
मेरी गाड़ी है,
ये मुझे दे दो। खुदा तुझी से उम्मीद है। क्या मैं इसे उठा सकता हूँ? एकदम लाल है।
खूबसूरत है।
खुदा का शुक्र।
लॉकअप में तुम्हें बहुत परेशान किया ना?
लॉकअप थोड़ी था मेरी जान, एक कमरा था जिसमें 2-3 घंटे बैठे बैठे सोच रहा था, बस उतना ही उसमें परेशानी किया। लेकिन तुम्हें परेशानी हुई, शर्मिंदा हूं, अकेली थी। ए बाबा, इसे देखो कितनी छोटी सी है मेरी बेटी। इसका नाम क्या रखेंगे?
तुमने तो कहा था सलमा।
हाँ कहा तो था, लेकिन फिर सोचा कि ये बड़ी नाइंसाफी है, सारी परेशानी तो तुमने उठाई है। इसका नाम तुम खुद इंतखाब करो।
वही सलमा।
सलमा बानू, सलमा बानू।
सलमा, what does that mean?
अब्बास, आनी पूछ रही है सलमा यानी क्या?
एक फरिश्ते का नाम है।
It's a special name, a name of an angel.
Angel? That's cute. बहुत खूबसूरत है।
ओ चलो खुदा का शुक्र, दिखने में तो मुझ पर गई है, तो इस तरफ से कोई मुश्किल नहीं। इंशाल्लाह अखलाक तुम पर गया होगा। ओ, क्या हुआ, क्या
तुम्हारी बात पे एतराज है?
जवान, मैंने क्या गलत कहा मेरे बच्चे?
बिल्कुल तुम पर गई है।
मेरी जान, कुर्बान जाऊं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
आप लोग सब बाहर जाएं, माँ और बच्चे को आराम करने दीजिए।
ठीक है
जी। जी
शुक्रिया।
अब माँ और बेटी दोनों यहाँ पर आराम करो, और कोई काम है? कुछ चाहिए तो नहीं?
नहीं,
मैं शर्मिंदा हूँ, दोबारा माफी चाहता हूँ। सबके लिए मिठाई ले जाता हूँ। ये लीजिए।
मुबारक हो।
शुक्रिया
शुक्रिया
शुक्रिया।
सलामत रहे।
ये लीजिए। डॉक्टर साहब आप भी लीजिए।
शुक्रिया। हमारी दोस्ती के इतने साल में मैंने अब्बास को कभी उस दिन जितना खुश नहीं देखा था। अब्बास परवाज का इतना आशिक था कि मैं हमेशा सोचता था कि उसका दिल चाहता होगा कि उसका पहला बच्चा लड़का हो और उसी की तरह पायलट बने। लेकिन जब सलमा इस दुनिया में आई तो पता चला मैं गलत सोच रहा था। अब्बास पूरी दुनिया के बराबर सलमा से मोहब्बत करता था।
हाय सईद।
हाय।
व्हाट आर यू डूइंग?
नथिंग, राइटिंग सम मेमोरीज ऑफ माय सेल्फ, कुछ यादें।
That's good. Saeed, see here. These are some pictures from my camera.
Isfahan?
हाँ. What about this one?
That's good. You are becoming a mahir photographer, professional, inshallah.
Saeed.
It's fun. तुम एक माहिर फोटोग्राफर थी, हो और हमेशा रहोगी। चाय तैयार है।
शुक्रिया।
ज्यादातर पायलट्स एयरबेस के अंदर ही रहने पर मजबूर थे, और इसी मजबूरी की बुनियाद पर वो मुल्क में होने वाले बहुत से हवादिस से बेखबर थे। मैं सोचता था क्योंकि मेरा तेहरान और मेहराबाद एयरबेस के दरमियान आना जाना लगा रहता था और क्योंकि मेरी वहाँ के कुछ लोगों के साथ अच्छी दोस्ती हो गई थी, मुझ तक ज्यादा खबरें पहुँचती थी, हत्ताबाद से भी ज्यादा। लेकिन बाद में पता चला कि मैं गलत फहमी का शिकार था। अब्बास एक नए तरीके से प्लानिंग और तहकीक कर रहा था, जैसे कि मुल्क के अंदर ही जहाज के पार्ट्स किस तरह से बनाए जा सकते हैं, ईरान पर हमला होने की सूरत में मुल्क की सरहद का दिफा किस तरह किया जा सकता है। हमेशा उसके फ्लाइंग आवर्स दूसरे पायलट से ज्यादा हुआ करते थे, लेकिन उसी के साथ साथ खबरों और मुल्क की सियासी हालात पर उसकी पूरी नजर थी। इसी वजह से उसका प्रमोशन भी जल्दी होता था और वो अपने सभी साथियों से हमेशा आगे रहता था, यहां तक कि मुझसे भी।
हेलो, लैली गफूरी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था वो एक्टिव और एनर्जी से भरी हुई लड़की ऐसी हालत में होगी। दिन रात तुम्हारी आंखों में नींद नहीं थी, अब उन दिनों की नींद पूरी कर रही हो, अपनी थकान दूर कर रही हो। बस हो गया, अभी उठ जाओ। मसूद साहब, मैं फारूक हूं, करामती।
मैं बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा था।
मेरी बैटरी का चार्ज उतर गया था, बाहर तुम दिखाई नहीं दिए, ऊपर आया तो यहां भी नहीं थे। मैंने कहा उसका भाई हूं, बाहर से आया हूं, तो अंदर आने की इजाजत दे दी।
तुम्हारी लैली से पहचान कैसे हुई?
लैली गफूर से पहचान शहीद अब्बास बाबाई की मदद से हुई, जिसने मुझे बड़ा किया और मुझे इंसान बनना उसने सिखाया। लैली साहिबा ने अब्बास बाबाई पर तहकीक करने के लिए ईरान के कई शहरों का सफर किया, ऐसे गांव और कस्बों में गई जिनका नाम भी कभी उसके कानों तक नहीं पहुंचा था। उसे एहसास हो गया कि ईरान की जो तस्वीर उसने जहन में बनाई थी सिर्फ तेहरान और आसपास के इलाके नहीं है।
इसीलिए उसने अपनी किताब नहीं छापने का फैसला किया?
मैंने तो किताब छपवाने के लिए सारी तैयारी कर ली थी, लेकिन वो खुद ही पशेमान हो गई।
तो फिर उसने इस बारे में क्यों मुझसे कुछ नहीं कहा?
मुझे याद है ठीक उसी दिन जब हम जियार जाने वाले थे, उसने मुझसे कहा शायद उसे इश्क होने लगा था।
इश्क?
अकदार से इश्क, अब्बास बाबाई जैसों की अकदार। उसे शक था, कहती थी शायद कनाडा नहीं जाए, सिर्फ एक ही चीज से झिझक रही थी, वो आप थे। कह रही थी कि उसने फैसला कर लिया था, लेकिन उस हादसे ने जो उस दिन तेहरान से इस्फहान के जहाज में पेश आया, उसे यकीन दिला दिया कि उसे रुकना चाहिए।
तो क्या आप भी उस जहाज में सफर कर रहे थे?
हम लोग मेरा गांव जियार देखने जा रहे थे। लैली साहिबा इसरार कर रही थी कि उस जगह को नजदीक से देखें।
नहीं, असल में मुश्किल ये नहीं है, सच पूछिए तो मुझे खुद भी अब तक इस बात पर पूरा यकीन नहीं है। हाँ, शुक्रिया, ये लीजिए।
नहीं शुक्रिया। देखिए, मुमकिन नहीं था कि मैं आपकी किताब को पढ़ता ही नहीं या कभी आपको ढूंढ ही नहीं सकता। मैं भी दूसरों की तरह ऐसे किसी राइटर के पास चला जाता जिसने पहले भी ऐसे मौजू पर कुछ काम किया हो या किताबें लिखी हो, लेकिन सारी चीज़ें इस तरह आगे बढ़ रही थी कि ताकि ये प्रोजेक्ट आप तक पहुँच जाए। मेरे ख्याल से बेहतर होगा कि आपने जो फैसला लिया है उस पर शक नहीं करें।
आप जानते हैं, अगर मेरे मंगेतर को ये बात पता चल जाए तो मुझसे बहुत ही नाराज हो जाएंगे, क्योंकि वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि मैं इस काम को कबूल करूं।
आप अपने दिल की बात माने, बाकी सब खुदा खुद ही सही कर देगा।
लेडीज एंड जेंटलमैन,
मौसम खराब होने की वजह से जहाज में मुश्किल पेश आ रही है। हम कुछ ही देर में इस्फहान एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे। आपसे गुजारिश है कि मास्क पहन लें और अपनी जगह पर बैठे रहें। ओवर।
Oh, my God.